नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी है। इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, गोबर, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। यह योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी। इससे कंप्रेस्ड बायोगैस देश के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख आधार बनेगी। योजना का उद्देश्य घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना, बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और देश भर में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
पहला फैसला बायोगैस से संबंधित है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम एक बनी है। और दूसरा असम में एक 4 लेन हाईवे का फैसला लिया गया है। टोटल 32,000 करोड़ रुपीस के ये दोनों प्रोजेक्ट और स्कीम्स मिला के है। हम सब जानते हैं कि भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है उसमें करीब 50% इम्पोर्ट करना पड़ता है। इस 50% इम्पोर्ट को कैसे कम करें उसके लिए लगातार कई प्रयास चल रहे हैं।
संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। यह ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुदान की मांग लोक लेखा समिति की 39वीं रिपोर्ट में पहचाने गए 2 विशिष्ट मदों से संबंधित है। उधर लोकसभा ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को प्रतिबंधित करने के लिए कड़े औषधि नियमों को अधिसूचित किया है। यह नियम औषधि नियम 1945 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दायर सभी आवेदनों पर लागू होगा। इस संशोधन के बाद आवेदक को एक निश्चित अवधि के लिए आगे आवेदन करने से रोक दिया जाएगा। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। और खेलों में तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चाहिला और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।